समाधि नहीं किया, उन्होंने पहले दाह संस्कार करके, उसका रीजन क्या था?
उसका रीजन ये था कि उस समय मुसलमानों का बड़ा आतंक था, तो मुसलमान लोग हिंदू लोगों के सन्यासियों का समाधि उखड़ के उनके शरीर की विटंबना करते थे, उनके शरीर को छिन्न विच्छिन्न करते थे और हिंदुओं के भावनाओं को बहुत कष्ट देते थे। तो ये जानते हुए उसी समय में रघुनाथ दास जी का शरीर समाप्त हो गया, तो बड़े, मैं अभी भी उनकी बहुत विचार करता हूँ तो मुझे बहुत उनका गर्व होता है जीव गोस्वामी के ऊपर, कि जीव गोस्वामी कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने प्रचलित यानी कि करंट कस्टम को तोड़कर एक नया कस्टम सिद्धांत स्थापन किया, और दास गोस्वामी इतने बड़े श्रेष्ठ आचार्य थे, उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनके उनके महानता को कोई चोट न पहुंचे, इसलिए उन्होंने उनका दाह संस्कार किया और उनकी रक्षा, उनकी ऐश को वहां पर समाधि में स्थापन कर दिया, ताकि वो फिर मुसलमान लोग क्या करेंगे, तोड़ के करेंगे क्या, रक्षा इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से जीव गोस्वामी नाम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जाने के बाद में वो आचार्य बने, और रघुनाथ दास जी उस समय तो बहुत ज़्यादा विरक्ति में थे, तो वो भजन में लिप्त थे, विरह में लिप्त थे, तो जीव गोस्वामी अधिकारी बने उस समय, गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बने। वहाँ पर बंगाल में जानवा माता जी थी और यहाँ पर जीव गोस्वामी थे, तो जीव गोस्वामी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विग्रह, राधा वृंदावन चंद्र, फिर भूगर्भ गोस्वामी के राधा छैल चिकन, और जयदेव जी के राधा माधव जी, और सनातन गोस्वामी की शीला, गोवर्धन शीला, ये सभी ना अलग अलग मंदिरों से निकाल कर अपने मंदिर में लाके रखी। कारण क्या था उसका, उस समय इकोनॉमिकली ये सभी मंदिर अलग 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 संभालना मुश्किल हो गया था, सब आचार्य चले जा चुके थे और मंदिरों की सेवा करने के लिए कोई था ही नहीं, पैसा भी नहीं था, तो उन्होंने अपने मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में, ये सारे विग्रह इकट्ठा किए, आज भी वहीं पर है वो, और एक लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सुंदर उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया। और जीव गोस्वामी ने बहुत कार्य किए हैं, संदर्भ लिखे 6 संदर्भ, और नरोत्तम दास, श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य, इनको उन्होंने शिक्षा दिया, उनके ही मंदिर में आगे जाकर उनके मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि भी है, भजन कुटी भी है, हमारे प्रभुपाद जी का कमरा भी उधर ही है, प्रभुपाद जी गुरु जी की पुष्प समाधि भी उसी में है। तो वो जीव गोस्वामी का जो नेतृत्व था, बहुत बड़े विद्वान थे वो, बहुत बड़े विद्वान, और उन्होंने गौड़ीय सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ पर स्थापन किया है। तो उसमें से एक फेदर इन द कैप, द राइट डिसीजन एट राइट टाइम ही हैड टेकन एंड सेव्ड द प्रेस्टीज ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। सो ऑल ग्लोरीज एंड ऑल थैंक्स टू जीव गोस्वामी। मुझे भी प्रश्न ही है, ये प्रश्न मुझे भी है, मैं उसका उत्तर ढूंढूंगा, मेरे पास उसका उत्तर नहीं है कि वो समाधि कौन सी, समाधि कौन सी है, तो वो भी सही है, लेकिन मुझे भी अभी दिखाते हुए 3 बार प्रश्न आया, लेकिन मुझे अभी पढ़ने को समय नहीं मिला उसका, लेकिन मैं ढूंढूंगा उसके बारे में, पता करूंगा कि उधर भी समाधि, उधर भी समाधि है। लेकिन एक बात पक्का है कि एक ही तिथि में अलग अलग साल में ये तीनों गोस्वामियों का शरीर समाप्त हो गया है। और कोई प्रश्न किसी को है गिरिराज गोवर्धन के विषय में? एक काम करते हैं, विल डू स्पीकर्स व्यू, तो वी कैन एटलीस्ट सी द स्पीकर्स। हाँ प्रभु जी,
ये जब चैतन्य महाप्रभु ने इसका राधा कुंड का जीर्णोद्धार किया था, तब उन्होंने काम किसको दिया था?
चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया था जीर्णोद्धार, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उसका आदेश दिया था।
मैंने वो थोड़ा
चैतन्य महाप्रभु ने उसका क्या कहते हैं उसको, पुनः प्रकट किया उसको, राधा कुंड श्याम कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने, और रघुनाथ दास गोस्वामी को इसका काम दिया गया उसको जीर्णोद्धार करने का। तो उसकी कहानी ऐसी है, अभी क्या है ना, ये गोवर्धन परिक्रमा में सारी कहानियां बताना मुश्किल है, फिर भी आपको बताऊंगा मैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत लग रहा था कि इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग भैंस भी धोते हैं, कपड़ा भी धोते हैं, तो ये अलग अलग अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक कुंड बनना चाहिए, घाट बनने चाहिए। लेकिन वो बड़े विरक्त थे, उनको लगा ये सब धन का काम कौन करेगा, धन इकट्ठा करना, मैनेजमेंट करना सब कुछ। लेकिन भगवान ने एक चमत्कार किया, एक बद्रीनाथ के भक्त थे, बद्री विशाल हिमालय के, तो वो बहुत बड़ा धन लेकर वहां पर गए थे। हाँ, तो बहुत बड़ा धन लेकर वहां पर गए थे, तो बद्री विशाल ने उस भक्त को दर्शन दिया। बहुत जोर से बात कर रहे हैं। तो बद्री विशाल ने उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम मेरे तुम्हारे पैसे यहां पर मत दो, तुम्हारे पैसे तुम जा लेकर वृंदावन जाना और राधा कुंड में वो स्वामी जी है उनको मिलना, उनको ये धन अर्पण करना और राधा कुंड श्याम कुंड का वो जीर्णोद्धार करेंगे आपके धन से। तो ये बेचारा आदमी हिमालय से पूरा उतर के वृंदावन आया, गोवर्धन गया और वहां पर उन्होंने दास गोस्वामी की भेंट की। तो ये उन्होंने सोचा कि ये भगवान की इच्छा है, तो फिर उन्होंने अपने नेतृत्व में राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार किया। ठीक है,
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस नीला राधे।
यस यस ब्रदर।
यस प्लीज।
उत्तर देवी टुक दर्शन इन नंदगांव, देयर वाज दिस मोती कुंड।
यस।
टुडे यू शोड अस मल्याई कुंड।
यस, देयर टू डिफरेंट कुंड्स।
बोथ द प्लेसेस देयर इज सिमिलर पास्ट टाइम।
नो सिमिलर पास्ट टाइम, नथिंग इज सिमिलर, एवरीथिंग इज फुल ऑफ वैरायटी। द स्टोरी इज लाइक दिस, आई विल टेल यू। In Motikund, for the engagement of Krishna, Radharani, she put the haldi in her hand. Na? So that time, Vrishbhanu Maharaj and Kirtamayi sent a shagun. And those shagun motis were planted by Krishna in Nandagaon. And he cultivated them and he grew them up. And he created Motikund. Motikund is that kund. But in Malayari Kund, what happened was, initially the gopis had beautiful motis and they refused to give to Krishna. So Krishna borrowed some motis from his parents and he cultivated them in Govardhan. And he created, it is said that he created such kind of motis that 10 million gold coins also will not be sufficient to buy one moti. That kind of moti he created. And then he also wore them to monkeys and cows, and that time gopis also came to ask, but he did not give them. And then finally he gave them after they became humble. So there are two different pastimes, and this pastime of Mukta Malayari Kund is given in Mukta Charita, the scripture written by Raghunath Das Goswami. Very nice book, you know. Very elaborate arguments and so many arguments are there. So many gopis are, Krishna is harassing them like anything. And finally then, after long harassment, then they become surrendered, and then Krishna makes beautiful boxes and delivers Radharani's box, Lalita's box, separate boxes. Very lovingly Krishna delivers to Radha Kund and they all get the precious jewels. Hare Krishna.
One more question I had in the morning, the part where you mentioned about Kichrika
Lotha
Baba. Yeah. There is any specific reason why he's called Poochri? I understood because it comes at the tail end.
He used to carry a Lotha. He used to carry a Danda with him. That Danda is called as Lotha or Lathi.
Okay.
Lotha Baba. So he used to carry a Danda. That's why he's called as Lotha Baba.
Okay.
Yeah. I also was surprised this time to know that it was Govardhan was... See, I'll tell you the story a little bit more elaborate now, as we have some 10 minutes more. The thing is that when Govardhan was lifted by Hanumanji and he was kept down by Hanumanji, he was very upset, extremely upset. That first of all, you came, you tried to lift me without introduction, and then you lifted me, and finally you kept me down. So he was like too emotionally outburst. So in one story, it is told that Hanumanji only gave him choice. See, you have two choices. Either I take you now also still, and you will get only one time Charan Sparsha of Ram, your Lord. And then Lord Ram, next time will not walk on this, he will fly in Pushpak Viman. He will not walk Now he is walking because he is Vanvasi. Now after defeating Ravana, his Vanvasi will be over. Or you wait till next incarnation and Krishna will come and then perform your pastimes, his pastimes in and around you. So he said, yes, I would like to have small darshan, I would like to have long association. But I will not be able to live here alone because now you have instigated me and I am in too much pain. So you have to stay with me. So that's why Hanumanji left one form there and then went ahead with second form. This is one story. Second form is, second story is that Hanumanji was totally overwhelmed to see the devotion and love that Govardhan had. And Hanumanji गए राम जी के पास. उन्होंने बताया राम जी को, आपका एक भक्त मिला मुझे, इतना बढ़िया भक्त था वो, मैं अभी खुद ही हैरान हूँ उसको देखकर. इतना रोया वो, इतना रोया. तो भगवान ने कहा कि आप जाके उसको मैसेज दे दो कि आपके लिए एक चॉइस है, अगर अभी आना है तो अभी भी आ सकते हो, लेकिन एक ही बार चरण का स्पर्श मिलेगा फिर मैं चला जाऊँगा. लेकिन अगर वेट करना है तो अगली बार वेट करो, तो मैं आपके आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द बहुत ही अंतरंग उत्कट लीला करूंगा, रास लीला करूंगा, एकांत लीला करूंगा, सब लीला करूंगा. तो फिर गोवर्धन जी को वापस आकर हनुमान जी ने बाद में आके संदेश दिया है कि डोंट वरी, और कृष्ण जी आएंगे आपको संग देंगे. तो ब्रजवासी लोग ना उसका बहुत अच्छा देते हैं इंटरप्रिटेशन. हाँ, इसको ब्रजवासी पंच. वो क्या होता है, 7 कोस की जगह बाकी थी ब्रिज में, और 7 कोस का ये गोवर्धन पर्वत था. तो 7 कोस का पर्वत 7 कोस से जगह में फिट नहीं हो पाया क्योंकि पहले ही ब्रिज पूरा हो गया. तो इसलिए भगवान ने 7 दिन और 7 रात गोवर्धन को ऊपर धारण किया. ये 7 नंबर का पंच है. तो 7 नंबर का 7 दिन 7 रात भगवान ने उसको छतरी के रूप में अपने सर के ऊपर धारण किया, उसको सम्मान दिया अपने ऊपर धारण करने का. और ऐसे कहते हैं कि 7 दिन 7 रात क्यों, कोई बोल सकता है इसके बारे में? गोप कुमार जी आप बता सकते हैं Why only 7 days 7 nights?
Prabhu, we can't see your video.
I'm also searching myself where I have gone. I don't know where. Anyways. I can see. Gop Kumar ji, where are you?
Hare Krishna, Prabhu ji.
Why only 7 days 7 nights? Can you tell me?
No, Prabhu.
Anybody can attempt? Amrit Rupini can attempt? Aisa hai na ki. कितना दिन पानी बरसाने का है, ये पानी के स्टॉक के ऊपर डिपेंड था ना. 7 दिन में खाली हो गया तो क्या करेंगे, वो 7 दिन में बंद करना पड़ा. 7 दिन 7 रात वर्षा करने का कारण क्या था, क्योंकि 7 दिन 7 रात तक चला पानी उनका, बाद में टैंक खाली हो गए. हाँ, तो अगर 700 दिन चलता ना तो 700 दिन भी खड़े रहते ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था, ना भूख ना ना प्यास ना निद्रा कुछ नहीं था उधर. ये बहुत रहस्य की बात है. हाँ, क्योंकि ब्रजवासियों को तो कोई दुख नहीं था उसके अंदर, अंदर रहते हुए उनको कुछ खाना पीना कोई, इतना नेत्रों से वो अमृत पान कर रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी. उनको उल्टा लगा कि जल्दी इतना बंद क्यों हो गया, क्योंकि सभी लीलाओं के भक्त एक साथ में कभी आते नहीं ना, सभी दास्य रस. अभी आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, मुझे अभी याद आ रही है, बहुत सुंदर कहानी. तो क्या हुआ, भगवान ने वो पर्वत को उठाया है ना, सबसे पहले तो वो मोड़ दिया ट्री को, फिर उनको हौसला दिया, फिर गुफा में घुसे और उठाया. उठाने के बाद में अपने उंगली पे खड़ा कर दिया. उंगली पे क्यों खड़ा कर दिया, ऐसे क्यों नहीं खड़ा किया, उनको दिखाना था कि मेरे शरीर के सबसे कमजोर हिस्से से इंद्र की सबसे बड़ी शक्ति मैं परास्त कर रहा हूँ, इसलिए खड़ा रहेगा. अभी कैसे, उसको कहते हैं लीलया, मतलब एकदम आराम से, प्रेम से, कोई ऐसा ऐसा पसीना आ रहा है, दम घुट रहा है, ऐसा कुछ नहीं, आराम से खड़े, एकदम प्रेम से खड़े. ऊपर से फिर क्या ना, उतना उठा दिया तो मैया देख रही है, तो परेशान थे ना दिन भर, परेशान थे, अभी तो सुरक्षित हो गए. तो मैया कहते अरे लाला, तू मक्खन नहीं खाया कितना दिन, कितना देर हो गई, तुम्हारा हाथ दर्द होता होगा, हाथ चेंज करो, अभी यहाँ से यहाँ करो, और ये हाथ को मालिश करती हूँ थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड को बहुत दुखता होगा, फिर थोड़ा माखन खा ले. और फिर वो सखियों को अपने बताती हैं, बड़ी सखियों को, देखा मैंने इतना 100-100 पद्मगंधा गायों को इतना पाल के रखा, इतना उनका दही निकाला, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत करके खिलाया, काम आया ना, देखो आज काम आया ना, देखो इतना उठा पाया. तो ये सब चर्चा कर रहे हैं बड़ी गोपियां. तो ग्वाल बाल देख के उनको हंस रहे हैं और कह रहे हैं अरे इनको क्या मालूम, इनके दही से क्या होता है, हमने कृष्ण को रोज गौचारण में कुश्ती खेलकर हरा हरा के इतना मौजूद बना दिया ना, देखो आज काम आ गया. हमसे कुश्ती में हार हार कर वो इतना बलवान हो गया है, इसलिए आज वो उठा पा रहा है। हाँ, तो ये गोपियां सुन रही है, जवान गोपियां, और वो हंस रही है, बोले ये मैया को भी पतो ना आए और ये गाल बालन को गवार को पतो ना आए, हमें पतो है कारण का है। वाको क्या कारण है उसका? क्योंकि कृष्ण भगवान को राधा रानी देख रही है दूर से, उनकी नजर भेंट हो रही है, देखो देखो कहाँ देख रहे हो। तो ग्वाल बाल हंस रहे हैं, तो ग्वाल बाल को बोले आपको पता नहीं है, तो बोलते क्या कारण है आपका? तो बोले देखो कृष्ण कहाँ देख रहे हैं, राधा रानी को देख रहे हैं। राधा कहाँ देख रही है, कृष्ण को देख रही है। तो कृष्ण को नजरों से वो शक्ति प्राप्त हो रही है जिसके कारण वो उठा के खड़े हैं। हाँ, तो उसके बीच वो नीचे देखते हैं, झुक कर देखते हैं। श्रीनाथ जी महाराज का जो दृष्टि है ना, वो नीचे जमीन की ओर है। ऐसे कहा जाता है कि श्रीनाथ जी की कृपा चाहिए तो श्रीनाथ जी के चरणों में गिरकर ऐसे ऊपर देखना चाहिए और उनके नजर से अपनी नजर मिलाना चाहिए, तो कृपा होती है। अभी उन्होंने नजर क्यों झुकाई? जब वो प्रेम से राधा रानी को देख रहे थे तो बल्लू भैया देखने लगे उनको, तो उनको बहुत संकोच हुआ, इसलिए उन्होंने नजर झुका ली आदर से कि बड़े भैया देख रहे हैं तो हमको ऐसा नजर मिलन नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सब बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो बीच में फिर उन्होंने क्या किया, ग्वाल बाल ने सोचा कि अरे कृष्णा हाथ दुखता होगा, कृष्ण को इतना छोटा सा बालक है, इतना बड़ा पर्वत है, कहीं गिर न जाए। सबने उसको सपोर्ट किया, सब डंडा सपोर्ट किया। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, उसको टिल्ट किया और सबके ऊपर ऐसा ऐसा धरने लगे। तो सबको पता चला कि हम नहीं उठा रहे हैं, कृष्ण ही उठा रहे हैं। उसमें और एक कहानी है, तो यू नो अपनी भवानी देवी ने ना ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है, 90 दिन का व्रत किया था, त्रैमासिक व्रत किया था राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो व्रत जब पूरा हुआ ना, तो भंडारा चल रहा था, तो भंडारे में सभी ऋषि मुनि, अभी अन्नपूर्णा देवी का भंडारा है तो क्या सब लोग आएंगे ना, सब 14 लोक के लोग आएंगे, अगस्त्य मुनि आए, सब देवता आए, सब ऋषि नारद मुनि सब लोग आए। तो अभी अगस्त्य मुनि ना, जानते हैं ना, उन्होंने समुद्र को पी लिया था एक बार, ऐसा भयंकर उनका एपेटाइट है। तो उनको कोई भी पंगत में आते थे ना अगस्त्य मुनि, तो उनको लास्ट में बिठाते थे। अभी देखो, समझो अभी मैं कैसे दिखाऊं आपको, समझो आप ये थाली मेरे हाथ में है, हाँ, तो आपको देंगे एक लड्डू ऐसे देंगे, अगस्त्य मुनि को ऐसा पूरा देंगे इसलिए लास्ट में बिठाते, सबको देते दे जाएंगे बचा हुआ सारा अगस्त्य मुनि को, ये पर्वत समान राइस, पर्वत समान सब्जी, पर्वत समान ऐसे सब देते थे उनको, और लास्ट में बैठ के पाते थे। तो अन्नपूर्णा देवी, तो अन्नपूर्णा देवी है, भरभराट है उनके पास, लेकिन फिर भी उनको टेंशन था अन्नपूर्णा होते हुए भी कि अगस्त्य मुनि को संतुष्ट कैसे करेंगे। तो कृष्ण के पास गई वो, और अगस्त्य मुनि के बारे में बोला, महाराज जी मेरा तो भंडारा बहुत महत्वपूर्ण है, ये भंडारा सफल होगा तो मुझे कृपा मिलेगी। तो कृष्ण बोलते, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा इस मामले को। और जाके ना सेकेंड लास्ट कृष्ण बैठ गए उसके बाजू में अगस्त्य मुनि के, और सब ऐसा ऐसा दिया जा रहा है उनको, और अगस्त्य मुनि खा रहे आराम से। तो अचानक कृष्ण उठ गए, मतलब महापुराण कर दिया कृष्ण भगवान ने और उठ गए। तो अभी पंगत में क्या होता है ना, पंगत में नियम होता है कि कोई छोटा व्यक्ति पहले उठना नहीं चाहिए, सबसे पहले सीनियर व्यक्ति खाना शुरू करना चाहिए, बाकी लोग खाना शुरू करेंगे, हमारे गांव में भी ये रिवाज है। और सबसे पहले अपना खाना भी हो गया ना, तो जूनियर आदमी बैठे रहेंगे ऐसे ही, जब सीनियर आदमी उठेगा ना उसके पीछे पीछे उठेंगे। और समझो कोई जूनियर आदमी उठ गया ना, तो सीनियर आदमी उसको अपना अपमान मानेगा, आधा खाना छोड़ के चला जाएगा, वो ही विल बी हर्ट। तो भगवान उठ गए अपनी मर्जी से भगवान अपनी मर्जी से उठ गए, और अगस्त्य मुनि बोले, महाराज अरे मैंने अभी तो पानी भी नहीं पिया है, ब्रेक इंटरवल भी लिया नहीं, इंटरवल का पानी होता ना बीच में, आधा खाने के बाद थोड़ा पानी पीते थोड़ा सा सेटल करने के लिए। तो कहते महाराज आप उठ गए, अरे मैंने तो इंटरवल भी लिया नहीं अब तक। तो बोले कोई बात नहीं, आपको मैं अच्छा इंटरवल का पानी पिलाऊंगा, डोंट वरी। तो ये अगस्त्य मुनि वहां पर थे, जब उन्होंने वो झुकाया ना, गोवर्धन को टिल्ट किया ना, तो उधर अगस्त्य मुनि आके जब पानी पी लिया, जो नीचे गिर रहा था उसको पानी पी लिया, अपना प्यास बुझा लिया, ये भी लीला हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, 7 दिन हो गए, 7 रात हो गई, पर्वत को नीचे रखा और कृष्ण बलराम सभी आनंद ले रहे थे। तो ग्वाल बाल को याद आया, अरे गोपियों ने बताया था कि राधा रानी के नजर के बल से उन्होंने गोवर्धन को उठाया था, अभी परीक्षा करते हैं कितना नजर में बल है। तो राधा रानी को मिलने गए सब ग्वाल बाल, हाँ कृष्ण भगवान भी गए, बोले अरे आपने तो कहा था आपकी नजरों की वजह से गोवर्धन को उठाया, अभी देखो कोई नहीं यहाँ पर, अभी आप हो और गोवर्धन पर्वत हो, उठाओ उठाओ उसको उठाओ। तो राधा रानी ने अपनी नजर जमा ली, राधा रानी ने अपनी नजर जमा ली गोवर्धन के तले और बोले उठाऊं, नजर को उठाया ना तो पूरा पर्वत आकाश में गया, कृष्ण ने तो यहां तक पकड़ा था, वो पूरा आकाश में गया कंप्लीटली, जब तक नजर ऊपर थी बहुत देर तक आकाश में देखा, सब ग्वाल बाल हैरान हो गए, केवल नजरों से उठाया, बाद में बोला नीचे रखू क्या अभी, तो हाँ रख दो, फिर नजर नीचे उतारी और गोवर्धन को वहां पर विराजमान किया। ऐसे गोवर्धन के नीचे ना बहुत सुंदर सुंदर लीला हुई है, 7 दिन तक इतना लोगों ने आनंद लिया है, क्योंकि माँ भी साथ में है, बेटा भी साथ में है, सखियां भी साथ में है, सखा भी साथ में है, गाय भी साथ में है, एवरीबडी इज टुगेदर, फुल फैमिली ऑफ गोवर्धन इज टुगेदर, फुल फैमिली ऑफ वृंदावन धाम। तो ऐसा है, गोवर्धन की लीला में जितना आनंद मिला है ना ब्रजवासियों को, उतना किसी भी लीला में नहीं मिला है, वो भी इकट्ठा होलसेल सबके साथ में। हरि बोल। यस यस अमृता झवर, यस
हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे जब वीडियो देखा था तब सारे पेड़ अलग अलग शेप के क्यों थे?
कौन से पेड़?
गोवर्धन के पर्वत पे प्रभु जी, सब जो पेड़ है
हाँ,
वो उसका पूछना है कि अलग अलग शेप के क्यों ऐसे आड़े टेढ़े?
वो ऐसे ही है, भगवान की लीला है, वो सब पेड़ ऐसे ही है, आड़े टेढ़े ऐसे छोटे मोटे एकदम अलग प्रकार के, वो भगवान का दिव्य धाम है, वैसे पेड़ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ब्रज में जितने पेड़ है ना वो सब अद्भुत पेड़ है, सब अद्भुत पेड़ है, लीला है भगवान की वो। यस और कोई प्रश्न है? यस व्हाट यू सेइंग? प्रभु जी ये तो अभी क्या बताए, हमको तो इतना सा पता है, वो तो अनलिमिटेड ग्लोरी है, जब पता चलेगा और बताएंगे आपको।
प्रभु एक प्रश्न मेरा ये है
हाँ,
कि we hear that Govardhan is the manifestation of Lord Shri Krishna himself, and also as you mentioned this Haridas Varya, the topmost devotee of Lord Shri Krishna.
Yes.
In what mood when we go for parikrama and when we see the Govardhan ji, what mood we should?
Both we should have both moods. We should, because Krishna exhibited both moods as Supreme Lord also and a servant of Krishna also. तो गोपियों ने कैसे देखा? हरिदास वर्य के रूप में देखा, फिर कृष्ण ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया और वो सब ऐश्वर्य दिखाया उनका, है ना? तो हमको दोनों भाव से देखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम, दोनों भाव में अलग अलग स्वाद है, अलग अलग आनंद है, तो आप उसको दोनों का आनंद ले सकते हैं। और
ये प्रश्न था कि आपने बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो सेवित विग्रह थे राधा गोपीनाथ,
हाँ
वो वहां पर राधा कुंड के पास थे,
हाँ
और जो मधु पंडित के द्वारा सेवित,
नहीं वो कैसा है ना, वो रघुनाथ दास गोस्वामी के एक्चुअली विग्रह वो शिला थी, चैतन्य महाप्रभु ने जो शिला पहनी थी ना गले में अपने, चौकोनी रंग की, ब्राउन रंग की शिला थी, चौकोनी रंग की इतनी सी थी, और वो उनके गले में पहना करते थे वो चैतन्य महाप्रभु, गुंजमाला के साथ पहनते थे। तो रघुनाथ को उन्होंने वो भेंट दिया, अपना थंब लगा के उसको पिघलाया और वो उनको दिया, तो उसकी वो पूजा करते थे, इसलिए उनको हम जनरली राधा गिरधारी के नाम से उनको कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये गोपीनाथ जी विग्रह जो है ना वो मधु पंडित के विग्रह हैं, लेकिन गोपीनाथ के विग्रह का जो पर्पज है, प्रयोजन, वो प्रयोजन के आचार्य हमारे गोपीनाथ जी के आचार्य जो हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, प्रयोजन तत्व जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रकाशित किया है महाप्रभु जी की कृपा से, लेकिन उनका जो सेवित विग्रह है वो शिला है जिसकी वो पूजन करते थे, जो अभी आज के तारीख में गोकुलानंद के मंदिर में है, गुंजमाला के साथ में आसन पे रखा है उनको।
थैंक यू प्रभु।
यस और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत।
यस यस वी कैन टेक 15 मिनट्स मोर, वी कैन टेक, देन वी कैन टेक अ ब्रेक। यस प्रभु जी, रघुपति प्राण प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
यस प्रभु जी।
जी प्रभु, जैसा कि आपने भी कथा के संदर्भ में बताया कि हमको शुद्ध मन से वृंदावन धाम का दर्शन करना चाहिए, और हम वैष्णव भजन में भी सुनते हैं कि विषय छाड़िया कब शुद्ध हो गए मन, तबे हेरबो हम श्री वृंदावन। तो प्रभु जी, हमारे जीवन में तो केवल विषय बस नहीं है, तो इस स्थिति में हम कैसे ब्रज का दर्शन करें, और
बिल्कुल सही बात है।
तो इसके पीछे
तो বিষয়া ছাড়িয়া কবে শুদ হবে মানা, কবে হামায়রা বসে শ্রী বৃন্দাবনা। তো আমারে আচার্য বতাতে হ্যাঁ কি বিষয় বাসনা লেকর হম কবি ভি বৃন্দাবন কা দর্শন নাই কর সকতে, লেকিন ইস অবস্থা মে ভি হামারে আচার্যোঁ কে বাণী কে মাধ্যম সে হম কর সকতে হ্যাঁ। अगर हम शुद्ध जो विषय वासना से मुक्त हुए आचार्य हैं, उनकी वाणी हम सुनते हैं पढ़ते हैं, तो हमको थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो दर्शन होगा, और हमको अपने विषय वासना को दूर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमको ये छोड़ना ही है प्रयास पूर्वक। हाँ, ऐसा नहीं कि बुढ़ा होगा तो भी कुछ कर नहीं पाएगा तो भी छोड़ दिया उसने, लेकिन मन में बहुत सारी वासना भरी हुई है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि एक ना एक दिन हमको ये सब कुछ छोड़ना है, और इसलिए गुरु महाराज ने दिया हुआ फॉर्मूला है ना, भगवान के नाम का जप, चार नियम पालन, प्रसाद ग्रहण, शास्त्र का अध्ययन, धाम का निवास, विग्रहों की पूजा, ये हमको नित्य नियम से करना है। अगर आप हमारे अंदर अगर काम वासना है भी, लेकिन हम लोग सिंसियर हैं और सिंसियरली ये साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो भी भगवान हम पर कृपा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग को चापलूसी नहीं करनी चाहिए। एक जगह पर साधना कर रहे हैं, एक जगह पर मन में चिंतन भी कर रहे हैं कैसा भोग लें, कैसा भोग लें, कैसा भोग लें, ये चापलूसी है। वी शुड नॉट बी इन अ चीटिंग मेंटेलिटी। हाँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर कल्टिवेटिंग डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, डूइंग मेडिटेशन हाउ टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड एट वन साइड वी आर डूइंग साधना एंड डूइंग अ ड्रामा ऑफ डूइंग साधना। तो ऐसा व्यक्ति को फिर वृंदावन कभी दर्शन नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रामाणिक है, जानता है कि मैं पतित हूँ, मैं कामी हूँ, अब मुझे ये सब छोड़ना है, सिंसियरली इज ट्राइंग एंड इज डूइंग इज साधना, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कृपा करते हैं और दर्शन देते हैं। सबसे बड़ा मन में की पॉइंट क्या है, की पॉइंट इज साधु संग, रसिक भक्तों का संग में हमको ये लीला सुननी चाहिए। और वो रसिक भक्त जो है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, इनके द्वारा ग्रंथ जो लिखे गए हैं ना, उनको हमको अध्ययन करना चाहिए और उनकी दृष्टि से हमको ये धाम का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आचार्यों की दृष्टि से ही वृंदावन का दर्शन करना चाहिए, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। आचार्यों की मुख से उनकी वाणी सुनकर हम वही बातें हैं, लेकिन वो आचार्य के मुख सुनते हैं तो उनकी पवित्रता के कारण वो दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है। वो कहते हैं ना, वील गेट अ ग्लिम्स, विल नॉट गेट दर्शन, वील गेट अ ग्लिम्स ऑफ वृंदावन धाम थ्रू द मर्सी एंड द वाणी ऑफ द रियलाइज्ड सोल्स आचार्यस। ठीक है प्रभु जी, और क्या प्रश्न था आपका?
हरे कृष्ण। रूपेश यादव जी, आपका प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अपने हाथ खड़े किए आपने। रूपेश यादव जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी,
मृत्यु अरदास बोल रहा हूँ प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी,
प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, आप जैसे बताया कि माता राधा रानी को वाद्य यंत्र में वीणा सबसे पसंद है, और राग में क्या राग बताए प्रभु जी? और
राग में ना पीलू पीलू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और भी एक राग है सारंग, वो भी राधारानी को बहुत पसंद है। उसके बहुत टाइप्स है, मधुमाद सारंग, शुद्ध सारंग, मिश्र सारंग, ऐसे बहुत राग हैं, वो राधारानी को बहुत पसंद है। और वीणा वाद्य बजाती है राधारानी। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो आई थिंक वील क्लोज डाउन हियर। और मेरी आपको एक विनती है कि आप आपके टाइम के 5 बजे आ सकते हो क्या? अभी कितने बजे आपके? अभी आपके 2:00 2:00 तो इज इट पॉसिबल टू कम एट 5:00? तो 5 to 7 2 घंटा आपका हो जाएगा, मेरा भी जल्दी दिन समाप्त हो जाएगा। तो हाँ, तो 5:00 आपके और मेरे 7:30 को हम लोग मिलते हैं। हाँ, और अभी हम गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त हो चुके हैं, तभी हम बरसाना शुरू करेंगे और बहुत सारा बरसाना करेंगे, और कल के दिन पे थोड़ा सा करेंगे, और बाद में फिर आपको फिल्म दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, हरे अभी आपको मुझे हाँ यस प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा।
Exactly, from yesterday you have been speaking for hours together, and by your mercy and blessing we are just sitting from at our place, seeing the wonderful, wonderful Dham Yatra, Prabhuji.
Jai.
Prabhu, that is very, very indebted to you, Prabhuji.
Bachenge to aur bhi ladenge.
हृदय से धन करेंगे,
जय हो,
सभी से विनती करते हैं कि हम सभी मिलकर के प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे, कितने सुंदर रूप से बहुत हृदय के साथ में समय उनको विस्तार पूर्वक कथा का श्रवण करा रहे हैं, सभी स्थानों का दर्शन करा रहे हैं जो हमारे लिए संभव नहीं, उस पर सभी हम लोग मिलकर के प्रभु जी को हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के धन्यवाद करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक जाने के पहले आपको ना एक मंगला आरती दिखाता हूँ। मेरे पास ना नंदगांव की मंगला आरती है, वो मुझे आपको दिखाना था, मैं अभी दिखाता हूँ आपको नंदगांव की मंगला आरती। दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं दिखाई पड़ रहा है। आवाज आ रही है। ये मंगल आरती है, मंगल आरती 3:30 AM